एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहरी नजर डालने वाले हैं जिसका टाइटल शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे।
हाँ, कौन सी?
एलिसन फॉलिन की द पावर ऑफ राइटिंग इट डाउन, मतलब लिखने की शक्ति।
अच्छा, हाँ ये बात तो है। अक्सर हम सोचते हैं भाई लिखना विखना तो वो लेखकों का काम है या कवियों का।
बिल्कुल, लेकिन ये किताब ना इसी सोच को तोड़ती है। ये बताती है कि कैसे सिर्फ कलम और कागज या आजकल कहें तो कीबोर्ड और स्क्रीन, ये हर किसी के लिए एक जबरदस्त टूल बन सकते हैं
किस तरह के टूल?
अपने विचारों को सुलझाने के लिए, अपनी भावनाओं को समझने के लिए, और यहाँ तक कि अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए भी।
ये तो दिलचस्प बात है।
और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें शायद इसकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।
सही कहा, हर तरफ से इतनी जानकारी आ रही है, मल्टीटास्किंग चल रही है, दिमाग में अक्सर एक धुंध सी छाई रहती है।
हाँ, पता ही नहीं चलता कि हमारी असल भूमिका क्या है, क्या लक्ष्य है हमारे, यहाँ हम इतना फंसा हुआ सा क्यों महसूस कर रहे हैं। ये किताब दिखाती है कि कैसे लिखने जैसा एक सीधा साधा काम इस धुंध को छांटने में मदद कर सकता है।
अच्छा, तो फिर शुरुआत करते हैं लेखिका से। एलिसन फॉलन कौन है ये?
हाँ, एलिसन फॉलन वो सिर्फ एक लेखिका नहीं है बल्कि एक जानी मानी पब्लिक स्पीकर और राइटिंग कोच भी हैं।
ओ, राइटिंग कोच भी?
जी, उन्होंने फाइंड योर वॉइस नाम का एक संगठन भी शुरू किया है
अच्छा,
जो लोगों को लिखने के जरिए अपनी आवाज, अपना सच, अपनी भूमिका, ये सब ढूंढने में मदद करता है।
ये तो बढ़िया है।
और दिलचस्प बात यह है कि उनकी जो सलाह है ना, वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है,
अच्छा, मतलब
लेकर आम घरेलू लोगों तक। और देखा है कि लिखने से उनकी जिंदगी कैसे बदली।
वाह, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव हुआ।
बिल्कुल, और वो खुद भी लिखने के उतार चढ़ाव से गुजरी हैं, तो उनकी बातों में एक वो हमदर्दी झलकती है।
हाँ, ये जरूरी है। उनका नजरिया ना वो वाकई में थोड़ा अलग है।
कैसे?
देखिए, वो एक कोच भी हैं तो प्रैक्टिकल सलाह देती हैं, फिर खुद राइटर हैं तो समझती हैं स्ट्रगल क्या है।
हाँ, वो तो है।
और उनमें एक जिज्ञासा भी है, मतलब ये लिखने का प्रोसेस काम कैसे करता है साइंटिफिकली।
ओह, साइंस भी।
हाँ, और सबसे अहम बात, ये किताब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए लिखने पर फोकस नहीं करती है।
तो फिर किस पर?
खुद को समझने के लिए लिखने पर जोर देती है। ये लिखने को कोई रहस्यमयी कला नहीं बताती, बल्कि एक रोजमर्रा की जिंदगी बदलने वाली आदत की तरह पेश करती है।
तो ये किताब असल में है क्या, मतलब इसका सार क्या है?
ये किताब लिखने को एक पर्सनल ग्रोथ टूल की तरह इस्तेमाल करने के क्यों और कैसे दोनों पर बात करती है।
अच्छा, क्यों और कैसे दोनों?
हाँ, इसका जो मूल तर्क है वो ये कि लिखना शायद सबसे असरदार तरीकों में से एक है खुद को बेहतर समझने का, अपना इमोशनल बोझ हल्का करने का, और एक ज्यादा पर्पसफुल जिंदगी जीने का नक्शा तैयार करने का।
सही कहा। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है तो बहुत सरल पर गहरा है।
क्या है वो?
देखिए, हमारे दिमाग में जो हजारों विचार, चिंताएं, सपने घूमते रहते हैं ना,
हाँ,
वो अक्सर बड़े अस्पष्ट होते हैं, उलझे हुए, बार बार वही बातें।
हाँ हाँ बिल्कुल, लूप में चलते रहते हैं।
बिल्कुल, जब हम उन्हें कागज पर उतारते हैं तो हम उन्हें एक एक ठोस रूप देते हैं।
जैसे कोई धुंधली तस्वीर साफ हो जाए।
हाँ बिल्कुल, वैसा ही जैसे किसी धुंधली तस्वीर का प्रिंट निकाल लिया, अब हम उसे गौर से देख सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये वाकई है क्या।
अच्छा,
ये अपनी अंदरूनी कहानी पर, अपनी भूमिका पर नियंत्रण पाने जैसा है।
ये तो कमाल की बात है।
और ये किताब किसके लिए है, मतलब कौन पढ़े इसे?
असल में ये हर उस इंसान के लिए है जो कभी कभी थोड़ा बिखरा हुआ महसूस करता है।
हाँ, होता है कभी कभी,
या कहीं इमोशनली अटका हुआ महसूस करता है,
या लगता है कि क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है,
या बस जीवन में थोड़ी और क्लैरिटी, थोड़ी दिशा चाहता है।
अच्छा,
और ये बात गांठ बांध लायक है, इसके लिए आपको खुद को लेखक समझने की कोई जरूरत नहीं है।
अरे वाह, ये बढ़िया कहा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं मैं कहाँ लिख पाऊंगा, पाऊंगी, या शुरू कैसे करूं।
बिल्कुल, ये किताब ऐसे सारे बहानों को साइड में रख देती है।
तो फिर चले थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं किताब किस तरह से अपनी बात रखती है।
हाँ बिल्कुल, इसे मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है।
अच्छा,
पहला हिस्सा समझाता है क्यों, मतलब लिखना इतना पावरफुल क्यों है।
ठीक है।
दूसरा बताता है कैसे, इसे अपनी आदत कैसे बनाएं। और तीसरा दिखाता है किस लिए, यानी इसके नतीजे क्या हो सकते हैं।
बढ़िया, क्यों, कैसे और किस लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कागज पर मस्तिष्क यानी क्यू।
हाँ, ये समझना दिलचस्प है कि लिखने का हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर होता क्यों है।
बिल्कुल, इसमें ऐसा क्या है?
यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन जबरदस्त आइडिया है। हमारा दिमाग चीजों को स्टोर करने के लिए नहीं बनाए।
अच्छा, तो फिर किस लिए बनाए?
सोचने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जब हम हर छोटी बड़ी बात दिमाग में ही रखने की कोशिश करते हैं तो वो ओवरलोड हो जाता है, जैसे कंप्यूटर की रैम भर जाती है।
हाँ, हैंग होने लगता है फिर।
बिल्कुल। लिखना क्या करता है? वो एक तरह से दिमाग के लिए बाहरी हार्ड ड्राइव का काम करता है।
बाहरी हार्ड ड्राइव, ये अच्छा कहा।
हाँ, मतलब स्पेस खाली हो जाता है। ये हमारे विचारों को दिमाग के जो वो उथल पुथल वाला इमोशनल हिस्सा है ना,
हाँ,
वहां से निकालकर तर्कसंगत सोचने समझने वाले हिस्से मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक लाने में मदद करता है।
ये बाहरी हार्ड ड्राइव वाली बात तो कमाल की है। मतलब दिमाग को खाली करना ताकि वो बेहतर सोच सके। किताब में शायद इसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहा है।
हाँ बिल्कुल, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। सोचिए, आपका दिमाग एक बहुत बिजी सीईओ है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।
ठीक है।
अगर उसकी डेस्क पर हजारों फाइलें पड़ी हों, अधूरे विचार, चिंताएं, याद रखने वाली चीजें, तो वो बड़े फैसले कैसे लेगा?
मुश्किल है।
लिखना इन फाइलों को डेस्क से उठाकर सही जगह रखने जैसा है, ताकि सीईओ यानी आपका दिमाग जरूरी कामों पर फोकस कर सके।
जैसे अपने लक्ष्य तय करना या अपनी भूमिका समझना, इस तरह के काम।
हाँ बिल्कुल। और एक और बड़ी मजेदार चीज है इसमें, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS।
रास, ये क्या होता है?
ये हमारे दिमाग में एक तरह का फिल्टर है। ये तय करता है कि हम किस जानकारी पर ध्यान दें और किसे इग्नोर करें।
अच्छा।
जब हम अपने लक्ष्यों को, अपने इरादों को या अपनी मनचाही भूमिका को साफ साफ लिखते ना,
हाँ,
तो हम असल में अपने RAS को प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि वो दुनिया में उन मौकों और संकेतों को ढूंढे जो इनसे मेल खाते हैं।
अरे, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर लाल गाड़ी लेनी हो तो अचानक हर तरफ लाल गाड़ियां दिखने लगती हैं, वैसा कुछ।
बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज। लिखना आपके इरादों को आपके दिमाग के लिए प्रायोरिटी बना देता है।
ये तो सचमुच जबरदस्त है। मतलब लिखना सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारे ध्यान को भी ट्रेन करता है।
हाँ, और तीसरा पहलू है आघात और भावना प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ट्रॉमा एंड इमोशन।
ये थोड़ा गहरा लग रहा है।
हाँ थोड़ा है, लेकिन बहुत जरूरी है। किताब समझाती है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कोई बहुत इंटेंस इमोशनल अनुभव होता है,
हाँ,
तो वो यादें अक्सर हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर अमिगडाला में बिखरे हुए टुकड़ों की तरह जमा हो जाती हैं, बिना किसी कहानी के, बिना किसी मतलब के।
ओहो।
लिखने से हम उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बना पाते हैं।
ये उन यादों को एक स्ट्रक्चर देता है।
अच्छा।
इससे दिमाग उन्हें बेहतर ढंग से प्रोसेस कर पाता है और उनका जो इमोशनल बोझ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये खुद अपनी कहानी का गवाह बनने जैसा है। हाँ। और इसमें बड़ी राहत मिलती है।
तो ये समझना कि लिखना दिमागी तौर पर क्यों इतना कारगर है, ये तो ठीक है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में करें कैसे। यहीं पर किताब का दूसरा हिस्सा आता है, एक नई आदत यानी कैसे।
सही कहा, क्योंकि ज्ञान बिना अभ्यास के क्या है। ये हिस्सा लिखने को आदत बनाने के प्रैक्टिकल तरीके बताता है। और सबसे पहले उन डरों को दूर करने की बात करता है जो अक्सर हमें रोकते हैं।
जैसे
खाली पन्ने का डर, या ये सोचना कि मेरी लिखाई अच्छी नहीं है, या मेरे पास लिखने को है ही क्या।
हाँ हाँ, ये सब बातें आती हैं दिमाग में। पॉलन कहती हैं, इन सब बातों को भूल जाइए। यहाँ मकसद कोई महान साहित्य लिखना नहीं है, मकसद है अपने मन की सफाई करना।
मन की सफाई। अच्छा, तो तकनीकें क्या हैं?
इसमें कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीकें बताई हैं। सबसे बेसिक है ब्रेन डंप।
ब्रेन डंप मतलब?
सोचिए, ये दिमागी कचरा बाहर निकालने जैसा है। बस 10-15 मिनट का टाइमर लगाइए।
ठीक है।
और जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसे बिना रुके, बिना सोचे समझे, बिना ग्रामर की चिंता किए बस लिखते जाइए,
बिना रुके जो भी आए।
हाँ, मकसद सिर्फ दिमाग को खाली करना है। ये अपनी भूमिका या लक्ष्यों के बारे में थोड़ी शुरुआती क्लैरिटी पाने का पहला कदम हो सकता है। सुनने में आसान लगता है, पर इसकी ताकत को कम मत आंकिए।
ये तो ट्राई करने जैसा है।
बिल्कुल। फिर है खास जरूरतों के लिए लेखन संकेत, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स।
अच्छा, ये क्या होते हैं?
ये दिशा देने वाले सवाल या अधूरे वाक्य होते हैं। जैसे अगर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो लिखें, समस्या ये है, मेरे पास ये विकल्प हैं, मुझे लगता है सबसे अच्छा रास्ता ये है, क्योंकि।
अच्छा।
अगर कोई भावना परेशान कर रही है, मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि इस भावना को शांत करने के लिए मुझे जरूरत है। या जैसे ग्रैटिट्यूड के लिए सिर्फ लिस्ट ना बनाएं, बल्कि लिखें कि आप किसी चीज के लिए क्यों और कैसे आभारी हैं। ये अभ्यास सोच को भटकने से रोकते हैं और गहराई में ले जाते हैं।
और वो जो अंदर से आवाज आती है, ये क्या लिख रहे हो, कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, उसका क्या करें?
हाँ, वो आंतरिक आलोचक बहुत बड़ा रोड़ा है ये। फॉलन जोर देकर कहती हैं कि ये पन्ने सिर्फ आपके लिए हैं, सिर्फ आपके।
अच्छा,
ये एक निर्णय मुक्त क्षेत्र है, जजमेंट फ्री जोन। यहाँ ईमानदारी और कितना लिखा ये मायने रखता है, लिखा कितना सुंदर है ये नहीं। नहीं, मतलब इसे अपनी किसी मौजूदा आदत से जोड़ लें, जैसे सुबह की चाय या कॉफी के साथ 10 मिनट लिखना।
अच्छा, ऐसे?
हाँ, एक खास कोना या समय तय कर लें, रोज करने की कोशिश करें, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए। कंसिस्टेंसी इज की, निरंतरता ही कुंजी है।
तो हमने क्यों समझा, कैसे समझा, अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, तीसरा भाग, एक नई हकीकत, यानी किस लिए, ये कैसे हमारी बाहरी जिंदगी में बदलाव लाता है।
हाँ, क्योंकि लिखना सिर्फ अतीत को समझने या वर्तमान को सुलझाने का जरिया नहीं है, ये भविष्य को एक्टिवली गढ़ने का भी एक शक्तिशाली टूल है।
अच्छा, भविष्य को गढ़ने का?
हाँ, जब हम अपने दिमाग की थोड़ी सफाई कर लेते हैं, पुरानी बातों से थोड़ा उभर जाते हैं, तब हम लिखने का इस्तेमाल उस जिंदगी का नक्शा बनाने के लिए कर सकते हैं जिसे हम सच में जीना चाहते हैं।
वाह, ये कैसे होता है?
इसमें एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अपनी कहानी फिर से लिखना, रीराइटिंग योर स्टोरी।
अपनी कहानी फिर से लिखना मतलब?
हम सब अनजाने में अपने बारे में कुछ कहानियां दोहराते रहते हैं, जैसे मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूँ, या मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, या मैं कभी लीडर वाली भूमिका नहीं निभा सकती।
हाँ, होता है ऐसा, लिमिटिंग बिलीफ्स जीने कहते हैं।
बिल्कुल, लिखने के जरिए हम इन लिमिटिंग कहानियों को पहचान सकते हैं, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं और जानबूझकर एक नई ज्यादा एम्पावरिंग कहानी गढ़ सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने अनुभवों को एक नए नजरिए से देखना है, अपनी शक्तियों पर फोकस करना है।
और फिर आता है भविष्य की स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग द फ्यूचर।
हाँ, ये एक कदम और आगे है। इसमें आप अपने आइडियल फ्यूचर का वर्णन ऐसे करते हैं जैसे वो अभी हो रहा हो, प्रेजेंट टेंस में,
जैसे वो सच में हो रहा है।
हाँ, विस्तार से लिखिए कि उस भविष्य में आपका एक दिन कैसा दिखता है, आप क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी भूमिका क्या है।
अच्छा,
ये आपके RAS, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है और आपके लक्ष्य को ज्यादा रियल और पहुंच में लगने लगता है।
ये तो अपने लक्ष्यों और मनचाही भूमिका को बहुत स्पष्ट रूप से देखने का जबरदस्त तरीका हुआ।
बिल्कुल, और अंत में ये सब पन्ने से कार्रवाई तक ले जाता है, फ्रॉम पेज टू एक्शन।
मतलब?
जब आप लिखकर ये साफ कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो फिर कैसे करना है, यानी एक्शन स्टेप्स लेना, वो ज्यादा आसान हो जाता है।
हाँ, ये तो है, एक लिखा हुआ विचार सिर्फ हवा में नहीं रहता।
सही कहा, वो एक प्लान का रूप ले लेता है और किसी लिखे हुए प्लान पर अमल करने की संभावना कहीं ज्यादा होती है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब से कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं?
हाँ, कुछ की टेकअवेज। पहला, लिखना कॉग्निटिव क्लैरिटी लाता है। दिमाग चीजें रटने के लिए नहीं, सोचने के लिए है, और लिखना उस सोच को साफ करता है।
दूसरा,
लिखने के लिए लेखक होने का लेबल जरूरी नहीं, ये सबके लिए है, एक बेसिक ह्यूमन टूल है।
सही। तीसरा,
कहानी के जरिए हीलिंग संभव है। अपने मुश्किल अनुभवों को शब्दों में ढालकर हम उन्हें समझने और उनसे उभरने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, ये खुद पर रहम करने जैसा है।
चौथा,
ये हमें विक्टिम मोड से निकालकर क्रिएटर मोड में लाता है। ये एहसास दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि लेखक हैं। हम तय कर सकते हैं कि अगला चैप्टर क्या होगा, हमारी भूमिका क्या होगी।
वाह, और पांचवा,
जिसे हम शायद मैनिफेस्टेशन का साइंस कह सकते हैं, लिखना हमारे दिमाग के RAS को एक्टिवेट करके हमें उन चीजों पर फोकस करने में मदद करता है जिन्हें हम पाना चाहते हैं। इससे उनके सच होने की संभावना बढ़ जाती है, क्लैरिटी एक्शन को जन्म देती है।
इन बातों को हम भारत में अपने रोजमर्रा के अनुभवों से आसानी से जोड़ सकते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल, चाहे वो परीक्षा का तनाव हो या करियर चुनने की उलझन,
परिवार की उम्मीदों का बोझ,
हाँ, या बस रोज की भागदौड़ में थोड़ी शांति और दिशा खोजने की चाहत, लिखना इन सब में एक साथी बन सकता है।
जब हम अपनी चिंताओं या लक्ष्यों को कागज पर उतारते हैं तो वे कम डरावने और ज्यादा मैनेजेबल लगने लगते हैं।
बिल्कुल, ये हमें अपनी अलग अलग भूमिकाओं को, जैसे छात्र, कर्मचारी, माता पिता, दोस्त, ज्यादा स्पष्ट रूप से समझने और उनमें बैलेंस बनाने में भी मदद कर सकता है।
किताब में कुछ कोट्स या पंक्तियां ऐसी हैं जो सीधे असर करती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे आपका दिमाग विचारों को रखने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि दिमाग को खाली रखना कितना जरूरी है।
और ये वाला, किसी चीज को लिखना उसे वास्तविक बनाने का पहला कदम है। एक विचार तब तक सिर्फ एक सोच है जब तक आप उसे लिख नहीं लेते। लिखने के बाद ये एक योजना बन जाती है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे लिखना सोच को एक्शन में बदल सकता है, खासतौर पर जब हम किसी लक्ष्य या नई भूमिका की ओर बढ़ रहे हों।
और ये वाला तो बहुत शक्तिशाली है। आप अपनी कहानी के कथावाचक नहीं, लेखक हैं। कथावाचक केवल रिपोर्ट करता है कि क्या हो रहा है, लेखक तय करता है कि आगे क्या होगा,
है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपनी जिंदगी की दिशा तय करने की ताकत है। हम अपनी भूमिका खुद चुन सकते हैं।
हाँ, और ये बात बहुत राहत देती है। लिखने के लिए आपको लेखक होने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक दिमाग वाला इंसान होने की जरूरत है। लक्ष्य एक अच्छा लेखक बनना नहीं बल्कि एक अधिक ईमानदार इंसान बनना है।
बिल्कुल, ये परफेक्शनिज्म का प्रेशर हटाता है और बस शुरुआत करने के लिए कहता है। जैसा कि किताब में एक और जगह कहा गया है, स्पष्टता कलम के माध्यम से आती है, कलम तक नहीं।
वाह, मतलब लिखने से ही क्लैरिटी मिलेगी, पहले से सब कुछ साफ होने का इंतजार मत कीजिए।
एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये है कि इन सब अच्छी बातों को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए।
हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं?
किताब इसमें भी बहुत मददगार है। जैसे अगर चिंता या तनाव महसूस हो रहा है,
हाँ,
तो 15 मिनट का ब्रेन डंप करके देखें। अपनी सारी चिंताएं, डर, उलझने कागज पर निकाल दें। अक्सर तुरंत राहत महसूस होती है।
अच्छा, और दुख या इमोशनल चोट के लिए?
उसके लिए आप ऐसे पत्र लिख सकते हैं जिन्हें भेजना जरूरी नहीं।
हाँ,
किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप खो चुके हैं या जिससे नाराज हैं, या फिर खुद के किसी पुराने वर्जन को। ये भावनाओं को सेफ तरीके से बाहर निकालने का एक जरिया है।
और लक्ष्य तय करने के लिए, जैसे नए साल के रेजोल्यूशन,
उनकी लिस्ट बनाने के बजाय क्यों ना इस बार अपने सफल भविष्य की एक डिटेल्ड कहानी लिखें।
ओह,
अपनी मनचाही भूमिका में खुद की कल्पना करें और उसे प्रेजेंट टेंस में लिखें, फिर देखें आपका आरएएस कैसे एक्टिवेट होता है।
और कोई बड़ा फैसला लेना हो तो
उसके लिए स्ट्रक्चर्ड राइटिंग का इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन क्या है, हर ऑप्शन के फायदे नुकसान क्या हैं, इन्हें विस्तार से लिखें। लिखने का प्रोसेस अक्सर सही रास्ता दिखा देता है।
और वो जो लिमिटिंग बिलीव्स की बात हुई थी, उन्हें कैसे पहचाने और बदले?
उसके लिए जर्नलिंग शुरू करें। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए उसे लिखें और पूछें, क्या ये वाकई सच है, इसका क्या सबूत है। फिर उस सोच को चैलेंज करें और एक नई, ज्यादा पॉजिटिव और एम्पावरिंग कहानी लिखें। ये अपनी भूमिका को नए सिरे से डिफाइन करने जैसा है।
मेरे लिए ना इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि लिखने जैसे कितने साधारण से दिखने वाले काम में कितनी जबरदस्त शक्ति छुपी है।
हाँ।
ये सिर्फ अपने विचारों को रिकॉर्ड करना नहीं है, ये एक्टिवली अपनी सोच, अपनी भावनाओं और यहाँ तक कि अपनी हकीकत को गढ़ना है।
सही कहा।
और सबसे अच्छी बात, ये टूल हम सबके पास है। कोई महंगा कोर्स नहीं, कोई गैजेट नहीं, बस कलम और कागज।
हाँ, और मुझे वो लेखक बनाम कथावाचक वाली बात बहुत असरदार लगी।
बिल्कुल,
ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के ड्राइवर सीट पर बैठ सकते हैं।
बिल्कुल,
और ये जानना भी सुकून देता है कि इसके लिए कोई लिटरेरी टैलेंट जरूरी नहीं, बस थोड़ी ईमानदारी और शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए।
सही है, लिखना एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने, भावनाओं को समझने और अपने इरादों को स्पष्ट करने में मदद करता है।
और जब हमारे इरादे स्पष्ट होते हैं तो हमारे कदम भी ज्यादा भरोसे और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं।
तो इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ बिल्कुल।
आज आप अपने दिमाग से कौन सी एक चीज, एक चिंता, एक विचार या एक सपना उतार कर कागज पर रखना चाहेंगे ताकि थोड़ी ज्यादा स्पष्टता या शांति महसूस हो सके? वो कौन सा पहला कदम है जो आप कलम उठाकर लेना चाहेंगे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।